ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। जनजेड आंदोलन संबंध में जांच कर रहे आयोग ने की पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित 5 व्यक्तियों के विदेश दौरे पर रोक लगाने की सिफारिश। पर्व त्योहार के दरमियान सुरक्षा सतर्कता अपनाने का प्रहरी ने सभी से किया है अनुरोध। कहा, देश भर के जेलों से भागे कैदी बंदियों की हो रही है उच्च निगरानी। सल्यान के कपूर कोर्ट में हुई जीप दुर्घटना में 3 लोगों की हुई मौत। और भारत के तमिलनाडु में राजनीतिक रैली में मची भगदड़ में कम से कम 39 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। जनजेड आंदोलन संबंध में छानबीन के लिए गठित जांचबूझ आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित 5 व्यक्तियों के विदेश दौरे पर रोक लगाने की सरकार से सिफारिश की है। आयोग की आज की बैठक ने पूर्व प्रधानमंत्री ओली समेत पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाड़ी, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के तत्कालीन प्रमुख हितराज थापा और काठमांडू के तत्कालीन जिला अधिकारी छविलाल रिजाल के विदेश दौरे पर रोक लगाने की सिफारिश करने का निर्णय किया है। ये जानकारी आयोग के सदस्य विज्ञान राज शर्मा द्वारा आज जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि वे छानबीन के दायरे में हैं, इसलिए उन्हें किसी भी वक्त आयोग में उपस्थित होना पड़ सकता है। इसलिए आयोग की स्वीकृति के बिना काठमांडू घाटी तक नहीं छोड़ पाने की व्यवस्था करने के लिए संबंधित निकायों में पत्राचार करने का निर्णय किया गया है। सरकार ने जनजेड प्रदर्शन में घायल हुए लोगों की पहचान और आसान उपचार के लिए परिचय पत्र वितरण का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने बताया कि जनजेड प्रदर्शन में घायल हुए लोगों को परिचय पत्र वितरण, स्वास्थ्य उपचार के लिए अस्पताल निर्धारित करने और जनजेड क्लिनिक संचालन करने का निर्णय किया गया है। मंत्री खरेल ने बताया कि घायलों के उपचार को आसान बनाने के लिए हॉटलाइन और संपर्क व्यक्ति नियुक्त करने, घायलों का वर्गीकरण करने के लिए तकनीकी समिति गठित करने और तत्काल कार्य शुरू करने का निर्णय किया गया है। मंत्री खरेल ने यह भी जानकारी दी कि उक्त तकनीकी समिति द्वारा किए गए घायलों के वर्गीकरण के बाद सरकार उचित राहत की व्यवस्था करेगी। संचार मंत्री खरेल ने बताया कि बैठक ने प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के प्रमुख सलाहकार के रूप में अजय भद्र खनाल और जनसंपर्क का सलाहकार के रूप में गोविंद नारायण तिमल सेना की नियुक्ति का भी निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने कार्तिक 10 से 13 तक भारत के नई दिल्ली में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की 8वीं बैठक में भाग लेने के लिए ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री कुलमान घिसिंग को मंजूरी दी है। नेपाल प्रहरी ने कहा है कि बीते भाद्र 23 और 24 को हुए जनजेड युवाओं के आंदोलन के क्रम में देश भर के जेलों से भागे हुए कैदी बंदियों के संबंध में उच्च निगरानी हो रही है। ये बताते हुए कि आंदोलन के दौरान देश भर के जेलों से भागे हुए कैदी बंदियों में से 8,000 लौट चुके हैं, जबकि 6,000 कैदी बंदी अब भी फरार है। प्रहरी ने मौजूदा पर्व त्योहारों के दरमियान नागरिकों को सतर्कता अपनाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरे ने कैदी बंदियों के बारे में कोई सुराग होने पर नजदीकी प्रहरी कार्यालय या सुरक्षा निकाय में सूचना देने का भी नागरिकों से आग्रह किया है। दूसरी तरफ कारागार व्यवस्थापन विभाग ने जनजेड प्रदर्शन के दौरान भागे हुए कैदी बंदियों से इसी आश्विन 20 गते तक जेल में लौट आने का आग्रह किया है। बीते भाद्र 23 और 24 को जनजी पीड़ी के आंदोलन के दौरान क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाओं की बीमा भरपाई के लिए अब तक 23,39,27,00,000 रूपये का क्लेम किया गया है। नेपाल बीमा प्राधिकरण के मुताबिक इंश्योरेंस क्लेम की सूचना आने के क्रम जारी है। प्राधिकरण के अनुसार अब तक संपत्ति बीमा 594, मोटर बीमा 2209, इंजीनियरिंग एवं ठेका जोखिम बीमा 144, परिवहन बीमा 11 और अन्य बीमा के 30 आवेदन पेश हुए हैं। इसमें सबसे अधिक क्लेम बागमती प्रदेश से किए गए हैं। सल्यान के कपूर कोट वार्ड नंबर 3 चोर खोला में हुई जीप दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। आज सुबह रुकुम के बाफी कोट से दांग के तुलसीपुर आ रही जीप दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इस हादसे में बाफी कोट गांवपालिका वार्ड नंबर 5 के 67 वर्षीय पवी केसी, 27 वर्षीय प्रकाश केसी और 30 वर्षीय शशिधर केसी की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये जानकारी सल्यान जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता इंस्पेक्टर रेशम खत्री ने दी। घायलों को राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर में सामान्य इलाज के बाद अतिरिक्त इलाज के लिए शिक्षण अस्पताल कोहलपुर ले जाया गया। बता दें कि जीप सड़क से करीब 300 मीटर नीचे गिरने से ये हादसा हुआ था। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। डोटी के पूर्व चौकी गांवपालिका वार्ड नंबर 2 स्थित हुणे खोला के सिलगड़ी झिंगराना सड़क खंड में भूस्खलन होने से एक बालिका लापता हो गई है। इस भूस्खलन में 3 अन्य व्यक्ति घायल भी हुए हैं। जिला प्रहरी कार्यालय डोटी के प्रहरी प्रमुख महेंद्र नेपाल ने बताया कि आज दोपहर सड़क पर चलते समय ऊपर से आए भूस्खलन की चपेट में आने से सायल गांवपालिका वार्ड नंबर 4 भालमा निवासी प्रेम बिष्ट की 5 वर्षीय पुत्री भगवती बिष्ट लापता हो गई। भूस्खलन में बिष्ट की 26 वर्षीय पत्नी महेश्वरी बिष्ट, 7 वर्षीय पुत्र सवीन और 9 वर्षीय पुत्री करिश्मा घायल हो गए हैं। घायलों का जिला अस्पताल डोटी में इलाज चल रहा है। बाजरा का मारतंडी कोल्टी सड़क खंड 4 महीने बाद फिर से संचालन में आया है। जिला प्रशासन कार्यालय बाजरा ने बताया है कि बारिश शुरू होते ही भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हुई सड़क नियमित संचालन में आ गई है। प्रमुख जिलाधिकारी गणेश प्रसाद पौडेल के अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय बड़ी मालिका नगर पालिका और बूढ़ी नंदा नगर पालिका के संयुक्त निवेश तथा सहयोग से सड़क मरम्मत और भूस्खलन सफाई का कार्य किया गया है। बूढ़ी नंदा नगर पालिका के डोजर का उपयोग कर गिरे हुए भूस्खलन को हटाए जाने के बाद सड़क संचालन में आई है। अर्थमंत्री रामेश्वर प्रसाद खनाल तथा नेपाल के लिए जापानी राजदूत माइदा तोरू के बीच एक शिष्टाचार भेंट हुई है। आज मंत्रालय में हुई इस भेंट के दौरान दोनों पक्षों के बीच नेपाल में हाल ही में आए राजनीतिक परिवर्तन, नेपाल जापान के बीच के ऐतिहासिक संबंधों तथा नेपाल के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में जापान द्वारा दिए जा रहे सहयोग जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री कुलमान घिसिंग ने प्रदूषण नियंत्रण और नेपाल को हरित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए विद्युतीय सवारी साधनों के प्रबंधन पर जोर दिया है। आचेन डिजिट द्वारा काठमांडू के सामाखोसी सहित देश के विभिन्न स्थानों में संचालित किए गए चार्जिंग स्टेशनों के उद्घाटन के अवसर पर मंत्री घिसिंग ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण और नेपाल को हरित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए ईंधन से चलने वाली सवारी साधनों का विद्युतीय साधनों में रूपांतरण करना आवश्यक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दशहरे की छुट्टियों के दौरान भी सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुला रहेगा। आयोग के प्रवक्ता डॉ टीकाराम पोखरेल द्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में आयोग के केंद्रीय कार्यालय हरिहर भवन, ललितपुर और प्रांतीय शाखा कार्यालयों के दशहरे की छुट्टियों में खुला रहने का उल्लेख किया गया है। आयोग ने मानवाधिकार उल्लंघन की कोई भी घटना होने पर आयोग के नजदीकी कार्यालयों में तुरंत सूचना देने का सभी से अनुरोध किया है। साथ ही आयोग ने त्योहारों के समय सेवा प्रवाह को सुचारू बनाने और शांति सुरक्षा को मजबूत करने के सरकार के कार्य में सहयोग देने के लिए आयोग से जुड़े सभी पक्षों से आग्रह भी किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के तमिलनाडु के करूर में बीजेपी की रैली में भगदड़ मचने से कम 39 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 10 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल है। अब तक 34 शवों की पहचान हो चुकी है और उन्हें पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जा रहा है। बाकी 5 शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। कुल 28 मृतक करूर जिले की ही रहने वाले थे। वहीं एक ही गांव के 7 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जेनजेड आंदोलन संबंध में जांच कर रहे आयोग ने की पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित 5 व्यक्तियों के विदेश दौरे पर रोक लगाने की सिफारिश। पर्व त्योहार के दरमियान सुरक्षा सतर्कता अपनाने का प्रहरी ने सभी से किया है अनुरोध। कहा, देश भर के जेलों से भागे कैदी बंदियों की हो रही है उच्च निगरानी। सल्यान के कपूरकोट में हुई जीप दुर्घटना में 3 लोगों की हुई मौत। और भारत के तमिलनाडु में राजनीतिक रैली में मची भगदड़ में कम से कम 39 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।